ईरान के स्टेट टेलीविजन का कहना है कि इसराइल के साथ युद्ध विराम शुरू हो गया है। वहीं इसराइल का कहना है कि ईरान की तरफ से नई मिसाइलें दागी गई हैं। कुछ घंटे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगची ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अगर इसराइल स्थानीय समय सुबह 4 बजे तक अपने हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले बंद कर देगा। इस डेडलाइन तक इसराइल ने तेहरान और अन्य इलाकों पर तेज़ हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान पर किसी हमले की खबर नहीं आई, लेकिन इसराइल ने अब तक युद्ध विराम की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि इसराइल और ईरान ने 24 घंटे में पूरी तरह लागू होने वाले युद्ध विराम पर सहमति बना ली है, हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी तक किसी पक्ष ने नहीं की है। मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने के लिए सहायता के लिए पंजीकरण कराने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की संख्या अब ईरान में लगभग 2900 और इसराइल में 1300 हो गई है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने बताया कि अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद इसराइल से बसों के जरिए इवैक्यूएशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। अगर इसराइल का हवाई क्षेत्र दोबारा खुलता है तो ऑस्ट्रेलिया लोगों को निकालने के लिए तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकों को निकालने के लिए 2 विमान भी मिडिल ईस्ट भेजे हैं। रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई सरकार अमेरिका के रक्षा उद्योग में निवेश बढ़ाने को तैयार है ताकि परमाणु पनडुब्बियां हासिल की जा सकें। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने निवेश नहीं बढ़ाया तो वो एक अहम अस्थायी क्षमता यानी स्टॉप गैप कैपेबिलिटी से चूक सकता है। लंदन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बेहतर रास्ते को नज़र में रखते हुए आगे बढ़ने पर ध्यान दे रहा है। ऑकस यानी अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की रक्षा निर्माण क्षमता को बेहतर बनाने में मदद के लिए $3 अरब देने का वादा किया है, जिसके बदले वो अमेरिका से वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियां खरीद सके। संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया को ये पनडुब्बियां 2032 से मिलनी शुरू हो सकती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने एक संक्षिप्त दौरे पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री सर कियर स्टार्मर से मुलाकात की। इस दौरे का मकसद था यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विचार विमर्श करना और रूस पर अतिरिक्त दबाव बनाने के तरीकों पर बात करना। व्लादिमीर जेलेंस्की ने राजनीतिक बैठकों से पहले विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। ये इस साल उनकी 3री मुलाकात थी। इसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में मिले। इस दौरान ब्रिटेन में प्रशिक्षण ले रहे कुछ यूक्रेनी सैनिक भी वहां मौजूद थे। विक्टोरिया की सरकार ने अपने उन नियमों को वापस ले लिया है जिनमें मकान मालिकों को गैस हीटर और गर्म पानी के सिस्टम खराब होने पर उन्हें इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलना ज़रूरी होता। दिसंबर में जारी एक प्रस्तावित योजना के तहत विक्टोरियन परिवारों से ये उम्मीद थी कि वो अपने गैस, गर्म पानी और हीटिंग के उपकरणों को उनकी उम्र पूरी होने पर इलेक्ट्रिक मॉडल से बदल देंगे, लेकिन अब लागू होने वाले नए नियमों में कुछ खास शर्तों पर छूट दे दी गई है। ये बदलाव पहले 2026 में शुरू होने थे, लेकिन अब इन्हें मार्च 2027 तक टाल दिया गया है। और अब खबर भारत से। हाल ही में हुए विधानसभा बाय इलेक्शंस के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात और पंजाब के एक एक सीट पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने केरल की नीलम्बर सीट जीती और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कालीगंज सीट पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी के विजेता गोपाल इतालिया ने गुजरात के विसावदर में करीब 17,500 वोटों से जीत दर्ज की। दिल्ली चुनाव हारने के बाद ये पार्टी का पहला बड़ा चुनावी प्रदर्शन माना जा रहा है। ये चुनाव गुजरात, पंजाब, केरल और बंगाल की 5 सीटों पर 19 जून को हुए थे, जिनके परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।